मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। दोस्तों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सबसे भूरी बाई के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं। भूरी बाई, जानबूझकर मैंने इसका शीर्षक भूरी बाई की कहानी नहीं रखा है, और उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि अगर मैं कहूं कि मैं भूरी बाई की कहानी सुनाने जा रहा हूं तो आपको लगेगा कि ये कोई मनगढ़ंत बात होगी या काल्पनिक बात होगी, क्योंकि कहानी के साथ हमेशा कल्पना जुड़ जाती है। लेकिन मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं वह सच्चाई है, अच्छी खासी ठोस सच्चाई, इसमें जरा भी कल्पना का छोंक नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भूरी बाई कौन रही होगी, आप चलिए कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में, मैं आपको नाम बताता हूं भूरी बाई, इनके बारे में कुछ बताइए, तो क्या नाम के आधार पर आप कुछ बता सकते हैं? डेफिनेटली आप बता लेंगे। तुरंत तो हो सकता है कि आपके मुंह से यही निकले कि नहीं नहीं हम तो कुछ जानते ही नहीं, हमने कभी इनके बारे में सुना ही नहीं है। लेकिन जब आप सोचेंगे कि अच्छा भूरी बाई, तो भूरी बाई से कुछ ऐसा लगता है कि ये गांव की महिला होंगी, बहुत ही सामान्य परिवार की महिला होंगी, हो सकता है कि कुछ अनपढ़ सी भी महिला हो। इस तरह की कुछ न कुछ बातें तो आप बता ही सकते हैं, और अगर आप ये बातें बता रहे होंगे तो आप गलत नहीं हैं, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। भूरी बाई गांव की बिल्कुल अनपढ़ महिला, मजदूर महिला। अब आइए मैं कहानी पर आता हूं जिसे मैं यहां सच्ची कहानी कहना चाहूंगा। हालांकि मेरे कहानी शब्द को सुनकर के आप ये मत कहिएगा कि पहले तो आपने मना किया था और अब आप कहानी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि जीवन की जो सच्ची कहानियां होती हैं ना, कभी कभी तो कल्पना की कहानियों से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं, तो हम इसे सच्ची कहानी कह लेते हैं। भोपाल में एक केंद्र बन रहा था, संस्कृति का केंद्र, साहित्य कला और संस्कृति का केंद्र, जिसे कहते हैं भारत भवन। आपने नाम सुना होगा भारत भवन। जब भारत भवन के बनने की शुरुआत हुई, उसकी जब नींव रखी जा रही थी, दीवालें खड़ी की जा रही थी, छतें डाली जा रही थी, तो उसमें काम करने के लिए एक महिला भी आई बहुत लोगों के साथ, जिसका नाम था भूरी बाई। मिट्टी ढोना, गारा बनाना, ईंटें पकड़ाना, पत्थर तोड़ना, दीवालें खड़ी करना, यह उसका काम रहा, और जबरदस्त रूप से वो अपने इस काम में जुटी रही, डटी रही। ठीक है, भारत भवन बनकर तैयार हो गया। इसके बाद भारत भवन में एक चित्रकार आए, स्वामीनाथन जी, बहुत ही सम्मान के साथ उनका नाम लिया जा रहा है, बहुत ही महान कलाकार स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन ने भूरी बाई को देखा। भूरी बाई बिल्कुल गांव की महिला, और आप जानते हैं कि जो गांव की महिलाएं हैं उनमें एक खासियत तो होती है, और वो है कला की खासियत। वो बहुत अच्छा लोक गीत गा सकती हैं, वो बहुत अच्छा लोक नृत्य कर सकती हैं, और जो लोक चित्र होते हैं वो भी बना सकती हैं। कभी वो दीवालें सजा रही हैं, कभी वो धरती पर अपनी जमीन पर रंगोलियां बना रही हैं, इस तरह के काम वो करती रहती हैं। तो स्वामीनाथन जी को लगा कि नहीं, इसकी उंगलियों में कुछ तो जादू है कि चित्र बना सकती है, उन्होंने देख लिया होगा कहीं चित्र बनाते हुए। तो उन्होंने भूरी बाई को चित्र में, कला में दीक्षित करना शुरू किया, और भूरी बाई ने धीरे 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 चित्र बनाने शुरू कर दिए, और धीरे 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 चित्र बनाते बनाते भूरी बाई जनजीवन, आदिवासी जनजीवन के चित्र बनाने वाली इतनी महान कलाकार चित्रकार बन गई कि इस बार के 26 जनवरी को उन्हें पद्मश्री देने की घोषणा की गई। पद्मश्री, तो चलिए पद्मश्री की घोषणा भी हो गई, लेकिन जो कलाकारों का जो दिल होता है, जो निर्णय होते हैं दोस्तों, वो कभी कभी सच में अंदर से बिल्कुल आपको रोमांचित कर देते हैं। भारत भवन का 39वां स्थापना दिवस मनाया जाना था, अभी 13 तारीख को स्थापना दिवस। तो अब क्या किया जाए, तो आप देखिए कि कितना खूबसूरत निर्णय लिया गया। निर्णय ये लिया गया कि भूरी बाई को इस स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाए, और वे भूरी बाई जिस भवन के नींव में उनका पसीना है उसी भवन के स्थापना समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में वहां मौजूद थी। मौजूद ही क्या थी, उनकी आंखें डबडबाई हुई थी, और उन्होंने कहा कि जिस भवन को मैंने बनाया, बनाने में मेरा कंट्रीब्यूशन रहा, आज उसी भवन ने मुझे इतना बड़ा बना दिया है। उन्होंने स्वामीनाथन जी को याद किया, लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया, चलिए वो एक अलग बात है। तो दोस्तों, इससे हम क्या अर्थ ले सकते हैं अपने लिए, क्या समझ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं? हमारे जीवन में कभी भी पूर्ण विराम नहीं आता है तब तक जब तक कि हम विश्राम घाट के वासी न बन जाए। कभी हमारे जीवन में फुल स्टॉप नहीं आता। हम चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों में रहें, कितने भी संघर्षों का सामना हमें क्यों न करना पड़े, स्थितियां कितनी भी बुरी से बुरी क्यों न हो, लेकिन वहां भी सूरज चमकता है, दमकता है, और सूरज और अगर नहीं दमकता है तो कम से कम दीपक तो टिमटिमाता ही है। सवाल यह है कि क्या हमारी आंखें उस टमटमाते हुए दिपदिपाते हुए दीपक को देख पाती हैं, या चारों तरफ एकदम बिल्कुल घनघोर अंधकार दिखाई देता है? पहली बात। दूसरी बात, हम कहते हैं, या इस कहानी को सुनने के बाद आपको लगे कि भैया उनको तो स्वामीनाथन जैसा गुरु मिल गया तो ठीक है, वो ऐसा कर गई, हमको मिल जाए तो हम भी कर लेंगे। नहीं, जो गुरु मिलते हैं, याद रखिए, वो पात्रता के आधार पर मिलते हैं। और भी बहुत से मजदूर थे, अकेली भूरी बाई ने ही भारत भवन खड़ा नहीं किया है, और भी बहुत से होंगे, थे ही, वे भी चित्र बनाते होंगे, लेकिन स्वामीनाथन जी को भूरी बाई में कुछ विशेष दिखाई दे दिया होगा। और जो विशेष दिखाई देता है, ये मत समझिए कि उनके हाथ में कोई जादू था, भूरी बाई के हाथ में, और स्वामीनाथन जी ने एहसास कर लिया उस जादू का। नहीं, जो जादू होता है वो व्यक्तित्व में होता है, वो हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारे अनुशासन में, बोलने के तौर तरीके में, कार्य के प्रति निष्ठा में, उन सब में झलकता है। और वो सब एक साथ मिलकर एक ऐसी भूरी बाई का निर्माण करते हैं जिसे स्वामीनाथन जैसे महान चित्रकार अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लेते हैं। क्या सच में हम कभी अपने शिष्यत्व के गुण को इतने व्यापक रूप में देख पाते हैं, या कि सीधे यह है कि शिष्य है, गुरु है, और गुरु कह रहा है और शिष्य सुन रहा है, और गुरु शिष्य का संबंध स्थापित हो गया? नहीं, अगर गुरु चयन करता है तो इस आधार पर चयन करता है कि इसका संपूर्ण व्यक्तित्व कैसा है। तो मुझे लगता है कि गुरु और शिष्य के संबंध को यदि हम इस व्यापक स्तर पर देखना शुरू कर दें तो हम में से सभी को कोई न कोई एक गुरु मिलेगा ही। और जब मैं गुरु की बात कह रहा हूं तो ये नहीं कि वो शरीर के रूप में ही मिले, अपॉर्चुनिटी के रूप में मिल सकता है, अवसर के रूप में, जिसे मैं कहना चाहूंगा, किसी भी रूप में मिल सकता है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि भूरी बाई हम सबको एक बहुत अच्छा जीवंत संदेश देती है। तो आज के लाइफ मैनेजमेंट में फ्रेंड्स, बस इतना ही। नमस्कार।